प्राचीन भारत में दो महाकाव्यों की रचना हुई थी। उनमें से एक रामायण है और दूसरी महाभारत। जहां रामायण आदर्श एवं मर्यादाओं की महत्ता को दर्शाती है, वहीं महाभारत वर्तमान परिदृश्य के बहुत समीप है। महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। बाद में संत कवि तुलसीदास जी ने इसकी हिंदी में श्री रामचरितमानस के नाम से पुनः रचना की। रामायण के नायक श्री राम हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और उनकी पत्नी देवी सीता को देवी लक्ष्मी का। राम ने राक्षसों के संहार के लिए इस धरती पर जन्म लिया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। यह महाकाव्य न सिर्फ भारत में अपितु अन्य देशों में भी लोकप्रिय है। बच्चों में अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों का समुचित विकास हो, इसलिए हमने रामायण की कहानियों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। त्रेता युग की बात है। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह जंगल से होकर आने जाने वाले लोगों को लूटता था। सारा सामान लूटने के बाद वह राहगीरों की हत्या भी कर देता था। उस डाकू के आतंक से लोग उस जंगल से गुजरने में डरते थे। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर घात लगाए था। तभी उसकी दृष्टि महर्षि नारद पर पड़ी। उनको निर्भय होकर घूमते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला,
तुम्हें इस जंगल में विचरण करते हुए जरा भी डर नहीं लगा? शायद तुम मुझे जानते नहीं। मैं एक डाकू हूँ, रत्नाकर डाकू। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना अपनी मौत के लिए तैयार रहो।
महर्षि नारद ने शांत भाव से कहा,
अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरा क्या दोष है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? शायद तुम नहीं जानते कि तुम अपने इन पाप कर्मों से अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हो।
ज्यादा मत बोलो, मैं तो यह सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ।
डाकू ने सहज भाव से कहा,
अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हारा परिवार भी भागीदार बनेगा? मेरे अनुसार तुम्हें उनसे पूछ लेना चाहिए। तुम पूछ कर आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
नारद मुनि ने कहा। रत्नाकर सोच में डूब गया, फिर कुछ सोचकर बोला,
ठीक है।
उसने महर्षि को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अपने घर चला आया। उसने माता पिता से पूछा,
मैं जो लूट मार करता हूँ, क्या आप लोग उस पाप कर्म में मेरे साथ भागीदार हैं?
माता पिता बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे पापों में तुम्हें साझीदार नहीं बन सकते। हमने तुम्हें कभी ये पाप कर्म करने के लिए नहीं कहा। रत्नाकर चकित रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी व बच्चों से भी यही प्रश्न पूछा। उनका जवाब भी उसके माता पिता के जवाब जैसा ही था। रत्नाकर को अपने परिवार वालों का जवाब सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने सोचा कि मैं आज तक जिनके लिए लूटमार करता आया हूँ, वही मेरे पापों में साझीदार बनने को तैयार नहीं। तो क्या मैं सचमुच अपने लिए नरक का द्वार खोल रहा हूँ? उसने तुरंत लौटकर महर्षि को खोल दिया और अपने हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह बोला,
महर्षि, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें।
महर्षि ने उसे उठाया और कहा,
मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों पर पछतावा है। आज से तुम सदमार्ग पर चलना। तुम हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
और वे अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से उसने भगवान राम के नाम का जाप शुरू कर दिया। उसके शरीर पर चींटियों ने अपनी बांबी बना ली, परंतु वर्षों तक वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। यही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। बहुत समय पहले भगवान सूर्य के पुत्र मनु ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। मनु मानवों के पहले शासक माने जाते हैं। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक एक सुंदर नगरी की रचना की थी। राजा हरिश्चंद्र, महाराज सगर, राजा भगीरथ, राजा दिलीप, राजा रघु, महाराज अज, महाराज दशरथ और उनके पुत्र श्रीराम इन्हीं के वंशज थे। महाराज रघु ने सुप्रसिद्ध सर्वदान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के बाद से सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। महाराज दशरथ इन्हीं महाराज रघु के पोते और राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या धार्मिक व सद्गुणी थी, कैकेयी सुंदर व बुद्धिमान तथा सुमित्रा सरल व शांत स्वभाव की थी। यद्यपि राजा दशरथ को किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी वे प्रसन्न नहीं थे। उनके प्रसन्न न होने का कारण उनका निःसंतान होना था। अंततः उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के अनुसार एक यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और दशरथ के यहाँ बालक के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। तभी यज्ञ की वेदी से प्रकाश के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने महाराज की ओर खीर का एक कटोरा बढ़ाते हुए कहा, राजन, यह खीर आप तीनों रानियों को खिला दीजिए। शीघ्र ही आपके महल में शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी। राजा दशरथ ने खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दी, परंतु कैकेयी ने थोड़ी सी खीर बाद में सुमित्रा को और दे दी। प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। महाराज दशरथ ने यह शुभ समाचार गुरु वशिष्ठ को सुनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। अब राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित संपूर्ण अयोध्या वासी राजकुमारों की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अतिरिक्त देवता व ऋषि मुनि भी भगवान विष्णु की धरती पर अवतार लेने के लिए प्रतीक्षारत थे। नियत समय पर चैत्र महीने के नवे दिन भगवान विष्णु ने कौशल्या जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कैकेयी ने एक पुत्र एवं सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमारों के जन्म के समाचार से अयोध्या में खुशी की एक लहर दौड़ गई। सभी देवता व ऋषि मुनि भी भगवान विष्णु के अवतार से अति प्रसन्न हुए।
भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन बिसाला, शोभा सिंधु खरारी।
तो इस प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से तीनों लोकों में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ पड़ी। मुनि, देवता, मनुष्य, गंधर्व सभी अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने प्रभु श्री राम का अनेकों प्रकार से स्वागत सत्कार किया।